ये आकाशवाणी है। अब आप अपर्णा सिंह से समाचार सुनिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में 70% कमी आई है और आतंकी घटनाओं में भी भारी कमी हुई है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री शाह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद और पूर्वोत्तर में उग्रवाद की 3 बड़ी चुनौतियों का दृढ़ता से सामना किया है। गृहमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटाकर मोदी सरकार ने संविधान निर्माताओं के एक संविधान एक झंडे का सपना पूरा किया है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले वर्ष मार्च तक भारत में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर के सभी हथियारबंद संगठनों से औपचारिक बातचीत की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कृषि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए कृषि मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए श्री चौहान ने कहा कि एनडीए सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन किया है। श्री चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने अब तक 75.74 करोड़ मीट्रिक टन न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीद की है। कृषि मंत्री ने कहा कि डिजिटल एग्री मिशन के अंतर्गत देश के हर किसान को एक डिजिटल पहचान पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पहल से किसान विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। लोकसभा ने केंद्रीय बजट में वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगे पारित कर दी हैं। सदन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने रसायन और उर्वरक, बिजली, वाणिज्य और उद्योग, आवासन और शहरी कार्य, सूचना और प्रसारण तथा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदान मांगे बिना किसी चर्चा के पारित कर दी है। सदन ने विभिन्न मंत्रालयों के लिए अनुदान मांगों के सिलसिले में कुछ सदस्यों द्वारा पेश किए गए कटौती प्रस्ताव नामंजूर कर दिए। इसके बाद लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा पेश किए गए विनियोग विधेयक 3/2025 को भी लोकसभा ने पारित कर दिया। 8वीं भारत यूरोपीय संघ साइबर वार्ता बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में आयोजित की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय के साइबर कूटनीति प्रभाग के संयुक्त सचिव अमित शुक्ला ने किया, जबकि यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यूरोपीय बाह्य कार्रवाई सेवा में सुरक्षा और रक्षा नीति के सह अध्यक्ष निदेशक मैसिज स्टेडजैक और संचार नेटवर्क सामग्री और प्रौद्योगिकी की महानिदेशक क्रिस्टियन क्रिकेटरप डी वेरोन ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, दूरसंचार समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल थे। बातचीत के दौरान दोनों पक्षों ने साइबर खतरे को देखते हुए साइबर नीतियों और सुरक्षा मानकों की समीक्षा की और हाल के घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों पक्षों ने 6G के मानकीकरण, दूरसंचार उपकरणों के लिए सुरक्षा मानकों और संयुक्त क्षमता निर्माण गतिविधियों पर सहयोग पर भी चर्चा की। श्रीलंका में इस वर्ष के स्थानीय निकायों के लिए नामांकन स्वीकार करने की तिथि बृहस्पतिवार को समाप्त हो गई। श्रीलंका के निर्वाचन आयोग ने बताया कि उसने 107 पंजीकृत राजनीतिक दलों और 49 निर्दलीय उम्मीदवारों के नामांकन स्वीकार कर लिए हैं। लगभग 340 परिषदों के 8,500 उम्मीदवारों के चुने जाने की संभावना है। 1,73,00,000 मतदाता इन उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। इस चुनाव में विभिन्न कारणवश अनेक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और स्वतंत्र समूहों द्वारा प्रस्तुत नामांकन रद्द भी कर दिए गए हैं। इस बीच राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आगामी निकाय चुनाव के उम्मीदवारों की घोषणा अगले सप्ताह कर दी जाएगी। सेपक टाकरा विश्व कप 2025 में भारत की पुरुष और महिला दोनों टीमों ने क्वाड इवेंट श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किए। इस विश्व कप का आयोजन बिहार में पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। पुरुष वर्ग के क्वाड इवेंट में भारत और म्यांमार ने संयुक्त रूप से कांस्य पदक जीता। थाईलैंड की पुरुष टीम ने इस वर्ष में स्वर्ण जबकि वियतनाम की टीम ने रजत पदक जीता। क्वाड टीम के महिला वर्ग में भारतीय और मलेशियाई टीम ने कांस्य पदक जीते। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।